ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी की धर्मपत्नी ने पूछा, जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2-2.5-3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका, वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की मां बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ तरफ कर रोते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूं थोड़ी सी, ये दान धर्म गणा करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, आप ज्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं, तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो, और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा। तो वो कह रही है, जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइयो, परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लग गया था, तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो नो घटना घटी, ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनके शरीर कति तो रुई जैसा था। आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूकिए, रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना आपने, सौदा क्यों नहीं करा, तरण क्यों नहीं पकड़ लिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा कि इसीलिए तो रो रहा हूं, मेरी बुद्धि वह पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूं, मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूं, जो घाटे का सौदा करके मैं घर आया हूं, दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है, 6 महीने हो गए रोते रोते, बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, अयो देखे महात्मा वो फिर आ जा, बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है, एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है, कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो, प्रसन्न ज्ञान से पता चलता है उसने प्रसन्न किया। अब धर्मदास जी ने प्रसन्न किया कि महात्मा जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है। तो वो महात्मा कहता है ये तो अजरो अमर है बच्चा, आपने किसने बहका दिया, ये सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है, उठ के चल पड़ा कि नहीं रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, उस ज्ञान से पता लग गया। फिर वो बुरी तरह फैसला कर लिया भगवान, या तो मिल जाए ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा, आप बताओ ना, वो कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में, तो परमात्मा ने प्रेरणा की, धर्मदास में प्रेरणा की, अको हो वो ये कहा कह रहे थे कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मैं पहुंच जाता हूं अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली जी भंडारा ही कर दो फिर, उसने एक दिन का कहा था, आमनी ने धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, 3रे दिन तावेंगे, तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे, 3रा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे, 3रा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, आज परमात्मा नहीं आए, यदि आज परमात्मा नहीं आए, फाइनल कर लिया कि फांसी खाकर मरूंगा आज, हृदय से कति फाइनल कर लिया, वो तो अंतर्यामी है, अकाज पक्का काम बिगाड़ेगा यू। उसी समय परमात्मा आगे और वहां से 50 गज की दूरी पर, 100 फुट की दूरी पर, 50-60 की दूरी पर एक कदम का पेड़ था, उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप जिंदा वाले रूप में वेशभूषा बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं, वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जंदे का बदन शरीरम बैठे वृक्ष कदम के तीरम, वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, भाग्या गया दौड़कर शरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए, हे भगवान इब का ना छोड़कर जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मान लूंगा। तो परमात्मा बोले ठीक है, मैं इसलिए आया हूं कि तेरे को ज्ञान समझाऊंगा, ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे जितने भी नकली बैठे हैं संत साधु। वो परमात्मा ने इसलिए कहा कि अगर मैं इनके सामने चर्चा करूंगा, मैं एक बताने वाला, ये 10 बरमाने वाले, जो कहे झूठ बोल रहे, ये कहां से लिया ज्ञान फलाना है, तो इस आत्मा को ये समझन नहीं देंगे, इसे उनको सबको फारिग करा। और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया, अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन जो खो गया था आज मिल गया। कहने का भाव ये लंबा ना करे दास, कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। आमनी ने कहा भगवान आपने, ये आपका भगत बहुत नर्म आत्मा का था, यदि मैं इसको सांत्वना ना देती तो ये पहले मर जाता, इतना दुख नहीं देना था आपने अपने बच्चे को, ये तो मर जाता। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा इसको मैंने लोहे जैसा ताव दिया, जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा, और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुने था, सारी बात साची मान लेता था, फिर मुकर जाता था। तो बेटा अब इसका लोहा गर्म कराया है मैंने, 6 महीने तक इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था, अब ये सारी बात सुनेगा, मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया, फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दे। परमात्मा बोले अरे मैं जो कह रहा हूं वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि नहीं वो स्थान दिखा दो वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है दिखाऊंगा कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा, ऊपर जाकर दिखा के वहां जाकर जो नीचे से साधु परमात्मा जिंदा रूप में थे सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए और उनका शरीर बहुत तेजो में था। वहां की और वहां की सारी सृष्टि देखी, वहां से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा, भगवान मुझे यही रख लो, हे परमात्मा आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हूं, आप स्वयं मालिक हो, हे भगवान मुझसे गलती हुई माफ करो, मुझे यही रख लो। परमात्मा बोले, नहीं आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो, मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा दो अक्षर का और फिर सार नाम दूंगा, इनकी साधना से दो मैं विधि बताऊंगा, शीघ्र धनी हो जाओगे और फिर यहां जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता कि सचमुच वास्तविकता क्या है। तो वापस भेजा, तीन दिन बीत गए इसी कारण में, तीन दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया सारे आसपास बैठे, यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा और वो देखा तो सचमुच तो मर चुका, यूं ना तो मरा मान लिया लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ, परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ हूं, बनारस में, वहां धानक रूप में रहता हूं, जुलाहे का काम करता हूं। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान ध्यान रह रहा होगा, तो जितने भी सब रिश्तेदार थे तो खुशी मनाई, भाई धर्मदास जीवित हो गया, चोखा धन्य है भगवान। फिर वहां पहुंचा जाके बनारस में देखा भगवान सामने, ओए होए वो बैठे जो के नो चरणा में पड़ गए, पहले प्रथम मंत्र दिया था, फिर सतनाम दिया, धीरे सार नाम देकर फिर कसम दिला दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान तो मैं तुझे बता रहा हूं, अभी कहीं बताना नहीं, ना ये सतनाम देना किसी को, ना सार नाम देना, नहीं तो धर्मदास तेरी मेरी लाख दुहाई, सार नाम की तबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिजली पीढ़ी हंसनी तेरी, और ये सार नाम को तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई, कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा सच्चा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और फिर हम पूरे विश्व को पार करेंगे, धर्मदास ये छुपा के रखना। तो वो समय आ गया है बच्चों, अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे पुण्यात्माओं इस अमर कथा में, रुचि ना करना, असंख्य युगों के बाद तुम्हारा दिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो, अब सुनिएगा वो अनुभव।
नमस्कार सर।
सत साई भगत जी,
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
मेरा नाम खेताराम दास है भगत जी।
सर कहाँ से आए आप?
मैं बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ।
सर क्या काम करते हैं आप?
मैं पाली में अकाउंटेंट का काम करता हूँ प्राइवेट फैक्ट्रियों में।
सर परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
पहले हम सिद्ध जसनाथ जी के संप्रदाय में थे और हमारे पूर्वज जैसे भी करते थे उनके संप्रदाय में थे, और मैं जैसे भी 6 साल से समझने लगा तो एक खेतपाल को हम मानते थे, तो उनके भी वो जैसे जर्दा है बीड़ी है और उनके नारियल चढ़ाने जाते थे, और जैसे विवाह हुआ तो एक माजी सा करके हैं तो उनके भी जागरण जमा देने के लिए जाते थे, तो उनके यहाँ शराब मंगवाई जाती थी, शराब पिलाई जाती थी, फिर सीटियों के बीच में पड़े रहते थे बेहोश होके, और सुबह वापस पूछते थे भोपा जी को के जागरण और बोलो माना नहीं है, फिर हम बहुत परेशान रहते थे भगत जी।
तो सर ये जो आप भक्ति करते थे इससे आपको क्या लाभ मिलता था?
इससे भगत जी हम मजबूरी में ये कर रहे थे, लाभ को तो छोड़ो हमको बहुत घाटा ही घाटा था, हमारे घर पे मतलब रात को बच्चे सिलाते रहते थे जैसे इनको कोई काट रहा है, बहुत ही परेशान थे बच्चे, तो फिर हम क्या करते हैं तो उनका समाधान ढूंढने के लिए वो भोपों को जैसे भी हमारी परंपरा में जानते थे तो उनको भोपों के पास में जाते थे, वो बताते हैं कि उनके यहाँ नारियल चढ़ाओ उनका जागरण बोलो, ऐसे करते करते भी हम बहुत परेशान रहते थे। मैं काम पे रहता था तो घर से जैसे भी उनका फोन आता था तो मेरे को लगता था कोई न कोई परेशानी आ गई है, नहीं तो वो फोन करते ही नहीं थे, फोन आने का मतलब है कोई न कोई समस्या आ गई, और मैं घर से वहां से काम से भी डिस्टर्ब जो होता था घर आता था, फिर उनको भूपों के पीछे पड़ता था, इस तरह से मैं बहुत दुखी था भगत जी।
सर परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आप कैसे आए?
मैं पाली में काम करता था तो यहाँ भगत जी एक है तो वो एक बार यहाँ आके गए थे, फिर उन्होंने एक किताब जो अखबार में लपेट के वो ले जा रहे थे, मैंने पूछा कि ये इसमें क्या है भगत जी, ये किताब है, कैसी किताब है दिखाओ, कि ज्ञान की किताब है, ये दूसरे ने मंगाई आपको ला के दूंगा। और मेरे को परमात्मा की दया से ये ज्ञान की किताबें मैं शुरू से ही पढ़ता था भगत जी, उसके अंदर मेरे को ये मालिक की दया है कि उस जो भी ज्ञान की किताब मिल जाती थी, जैसे जसनाथ संप्रदाय में है तो उनके यहाँ भी जो भी किताबें मिलती थी 400-500 की, जो भी वो किताबें मिलती थी वो मेरे एक बक्सा भरा पड़ा था, मेरे पूरी जो भी किताबें वो पढ़ने पढ़ता ही रहता था, गीता जी पर भी पढ़ता था, मेरे को कोई समझ में तो नहीं आता था फिर भी मैं पढ़ता था। तो वो भगत जी ने दूसरे दिन किताब ला के दी ज्ञान गंगा, और मैंने ज्ञान गंगा में कंप्यूटर के टेबल के नीचे रख दी, भूल गया मैं, 3-4 दिन तक मैं पढ़ नहीं पाया। फिर भगत जी फिर मिले कि आपने किताब नहीं पढ़ी, वो बहुत अनमोल है। मैंने देखा भाई अनमोल किताब है तो मैं पढ़ूंगा जरूर, तब तक मेरी बुद्धि काम नहीं करती थी। अनमोल मैंने देखा कितने की है भगत जी, क्या 10 रुपये की, मैं क्या समझता, मैं तो ना समझता। फिर उसको घर ले जाके पढ़ा और देखा, रात को लेके गया तो रात को 1:30-2 बज गए और मैं नींद आ गई, कब पता नहीं चला। सुबह 5 बजे देखा तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया, और ऐसे करके मैंने 2 दिन में किताब देखी। और फिर वो उन भगत जी के पास में गया वापस, उन्होंने पूछा कि भगत जी किताब पढ़ी? हाँ मैंने पढ़ी है। क्या आपको कुछ विश्वास आया? मैंने कहा भगत जी या तो विश्वास करो मत या पूरा करो। और तो क्या ठीक है भगत जी, आपको मैं कुछ इन सत्संग सुना दूंगा, मेमोरी में भर के दूंगा। फिर मेरे को सत्संग दी, और उसके बाद में 3-4 दिन बाद में कहा कि सत्संग सलोगे? मैं क्या सलूंगा, मैं वैसे भी मेरे को 1.5-2 महीने में गांव जाता था, तो मैंने सोचा गांव नहीं जाके इन भगत जी के साथ में सल के आ जाता हूँ। और मैं यहाँ आ गया, आया तो यहाँ की व्यवस्था देखी, एकदम बिस्तर वगैरह बिछे हुए, और ये इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि मालिक मैंने यहाँ जिंदगी में भी कभी नहीं देखा था। उसके बाद में मैं सुबह उठा तो यह देखता हूँ कि ये कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज, इनको मैंने कहीं कहीं देखा है, और ये मेरे को बहुत मैंने याद करने की कोशिश करी, पर मैंने कहा इस जन्म में तो मैं कभी आया ही नहीं हूँ, ये मालिक की रजा है। अब उसके बाद में मैंने कहा कि मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं, कि गुरुजी सुबह 10 बजे आएंगे, आप सुबह मेरे को नियम बताए, और मेरे को कहा कि नाम उपदेश ले लो। मैंने नाम उपदेश ले लिए और फिर गुरुजी के सत्संग हुआ, तो सत्संग में मेरे को इतना पूरा समझ में नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया। और फिर जैसे ही गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, फिर मैंने उनको बता दिया भगत जी के साथ में थे कि अब ज्ञान समझ में अब आएगा। और वास्तव में मेरे को एक एक पॉइंट इतना समझ में आया और गुरुजी के शरण में हूँ आज।
सर जैसे पहले आप जो भी भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपके घर में भी शांति थी और आपको भी मानसिक शांति थी, कि जैसे ही कोई फोन बचा तो आप सोचते आपके घर से आ गया कोई और कोई बुरा समाचार होगा, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए, तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला?
उस भक्ति से जैसे मैं तो अपने कल्याण के लिए नाम लेके काम पे वापिस चला गया, तो वहां से घर से कोई फोन नहीं आता था, तो मैं फोन करता था कि फोन नहीं आ रहा है, क्या बात है, कभी कोई तकलीफ तो ज्यादा नहीं है, फोन करता कि हमारे को कुछ भी नहीं है, सब सुख शांति है, फिर फोन करता कि हमारे सब सुख शांति है। मैंने कहा ये मालिक की रजा है, और एकदम आज दिन तक उनके कोई भी माता भी नहीं दूंगा, इतनी सुख शांति होगी घर में। और मालिक की दया से मैं वापिस यहाँ 3 दिन सत्संग सुना और 2 दिन आने जाने में लगे, और 5वें दिन वापिस गया तो वहाँ मुनीम जी है, उन्होंने कहा कि भाई आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा अभी मेरी तबीयत टेढ़ी है, कोई तकलीफ नहीं है। क्या आप परसों कह के गए थे कि मेरी तबीयत खराब है, दो दिन बाद में आऊंगा। मैंने कहा अभी मैं तो पांच दिन से सत्संग में जाके आ रहा हूँ, दो दिन कौन आया? क्यों? वो कह यार क्यों मजाक करते? मैंने कहा ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है मजाक, आप याद करो। क्या मैं बिल्कुल याद कर रहा हूँ? आपको याद नहीं है? फिर मैंने भगत जी को बताया कि मालिक परमात्मा ही काल के जाल से छुट्टी दिलवाते हैं।
सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति है और परमात्मा खुद आए हुए हैं। और अब जैसे भी मैं भटक रहा था और दुखी भी था, यहाँ आके सब सुख शांति मिली है और सतलोक का रास्ता भी मालिक ने बताया है, और यहाँ से पूरे जगत का कल्याण करने के लिए परमात्मा आए हुए हैं। अगर इनके शरण में आएंगे तो आप इतना सुख पाएंगे कि अभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे, और नहीं तो ऐसे ही भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं, उनसे कोई आना जाना नहीं है। इसलिए सभी भगत आत्माओं से मेरी प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में आए और नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।
परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम दया से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है जो समय बहुत ही मुश्किल से सुलभ होता है। आप जी अभी अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं है, आपके शुभ संस्कार आपको यहां लाए हैं। अब धीरे धीरे आप इस ज्ञान से परिचित होते जाओगे, आप उस गए हुए समय को बहुत पछताओगे। सारा जीवन हमारे पूर्वज दादे परदादे इस रोजी रोटी के लिए ही पचकर मर गए। अंत में सभी कुल के कुल नाश हो गए और आज वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में आज वो कष्ट उठा रहे होंगे। और यही स्पीड हमने पकड़ रखी थी, यही क्रियाएं हम कर रहे थे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था कि मनुष्य जीवन का एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट काम था, घना जरूरी कार्य था मनुष्य जीवन का, उसको तो हम एक एक्स्ट्रा सा काम मान रखा था। छह महीने में कभी चले गए अपने इष्ट धाम में, कोई त्योहार आया उस दिन कोई प्रसाद बना लिया और खा लिया, कभी थोड़ी बहुत कोई आरती मंत्र जैसे भी प्राप्त थे कर लिए। ये न तो कोई भक्ति थी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से वो भक्ति भी नहीं थी और न ही हमारी विशेष रुचि थी। आत्मा परमात्मा के बिना तड़पती रहती है, इसलिए वो कभी अंगड़ाई लेती थी तो काल ने ये 36 जाल बना रखे हैं, कोई तीर्थ बना दिया कि तो मंदिर बनवा दिया, कहीं पर ये नकली संत बैठा दिए उवा बाई बकने वाले, तो हम वहां जाकर अपनी आत्मा को संतोष दिलाते थे कि हमने मत्था टेक लिया, 5:15 का प्रसाद बांट दिया और नाम ले लिया गुरुजी से, हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था। ये सब काल की भूल भुलैया और हमारे अध्यात्म अज्ञान का ही परिणाम था। तो यहां आने से आपको सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ आप पर आने वाले सभी संकटों का भी निवारण परमात्मा करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। आप उसके बेटा बेटी हो। यदि पिताजी समर्थ है, सक्षम है, और बेटा या बेटी किसी कारण से भी गलती कर देते हैं, उनको कोई हानि हो रही है, तो अक्षति पूर्ति पिता तुरंत कर देता है। यदि वो पुत्र और पुत्री भविष्य में माता पिता के अनुकूल चलना का वायदा करें। इसी प्रकार हम बिगड़ गए हैं, अपने परमात्मा पिता से विमुख हो गए थे, और इस काल के जाल में फंस के हम अनेकों कष्ट उठा रहे, जिसमें हम परमात्मा के पुनः समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा उस पिता की तरह, जो अपनी संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय मानुष जीवन दिया, और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहां प्रेरित करके लाए हैं। यहां पर कोई भी पुण्यात्मा, भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है, कोई अन्य संकट निवारण के लिए ही यहां पहुंचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा, यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जावे। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं, वो तो एक का दुख दूर हुआ, आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने शेष हैं। और यहां आते रहोगे तो उन सभी का निवारण सहज में होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी, उसको परमात्मा पहले ही दूर कर देगा। किनके संकट दूर करेगा? जो परमात्मा पर समर्पित हो जाएंगे। समर्पित हमने कैसे होना है? जैसे पति भर्ता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में कभी भी पति वाला भाव नहीं करती, तो उसका पति उससे विशेष प्रेम करता है, विशेष उसका ध्यान रखता है। तो हम अपने पति से, अपने मालिक से, अपने स्वामी पूर्ण परमात्मा कबीर देव से हम दूर हो चुके हैं। हमने यहां आकर के 36 खसम कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं, कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं, कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत बेतालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं है जो हमें कुछ सुख दे सके, ये ना हमें दुख दे सकते ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि इन ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहेब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं, ये सक्षम है। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी, और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहेब, आपके मुख से यही निकलेगा, तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म पाप कर्म रूपी काटा होगा तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पांव समृत झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से संसारिक इन अधिकारियों से और इस तीन लोक के भगवान देवों से हम इनसे अपना संकट निवारण की इच्छा करते रहे ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो है कमी थी त्रुटि थी। और जब हम परमात्मा से ही सब कुछ डिमांड करेंगे इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं जिस समय आप गर्भ के अंदर थे उस समय आपके साथ कौन था? ना मां थी ना पिता था ना कोई अन्य सगा संबंधी था, अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था। उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। मां के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है, उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं क्योंकि त्रिगुण में माया, इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं, वो पिछली सब सुदबुद्ध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साक्षी है कि अंदर मां के पेट में आपको उसने पाला, मां के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो मां के सतन में दूध भेज दिया, और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था मां के सतन में। जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो, आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं है। जो परमात्मा आपकी इतनी केयर टेक करता है, इतनी देखभाल पहले से चिंतित है, तो अब कौन सा वो दूर है आपसे? आपको केवल प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है, उसको तो उसको भी मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य मूल यही होता है आत्म कल्याण हो, और इस जीवन में हमारा कोई पाप कर्म हो, कोई कष्ट आना हो, उसका भी निवारण हो। तो उसका निवारण तो एक ही से हो सकता है, उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से। अन्य भगवान, अन्य ये देव वो संकट निवारण नहीं कर सकते। पाप के हमारे किस्मत में लिखे हुए कर्म को वो नहीं समाप्त कर सकते, वो भोगना ही पड़ता है। केवल कबीर देव, कबीर साहब, ये हमारे इन पाप का नाश कर सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है। तो क्या बताते हैं? उस समरथ की रीज छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहां गई वो बात। अब देखो परमात्मा फिर आकर हमें सचेत करते हैं, क्योंकि काल ने तो हमारे ऊपर पर्दा डाल दिया, बुद्धि पर पत्थर गेर दिए। मां के गर्भ से बाहर आते ही हम सब कुछ भूल गए, नए सिरे से पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये तेरी मां, ये तेरे पिता, मामा, ये बुआ, और कह ख गगड़े, ये नए सिरे से पढ़ाई जाते हैं। हम इतने जो है अचेत हो जाते हैं, और परमात्मा फिर आकर हमें फिर नए सिरे से याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीज छुपाई, उस समर्थ ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी प्रार्थना सुनी, रीज माने खुश होकर के आप पर जो रहम किया, वो रीज आपके ऊपर प्रसन्न हुए, उस असमर्थ की रीद छुपाई, वो भूल गया तो उस मालिक के उस रहम को। अब कुल कुटुंब तय रहता, अब भूल गया ये तेरा बेटा या कोठी या कार ये मेरा, ऐसे वैसे सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहां गई वो बात। परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहां गई वो तेरी बात, जब नुका था मां के पेट में कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूंगा, आपकी याद गणी रखूंगा और आप पर पूरा विश्वास करूंगा। निर्वाह के लिए कार्य करते समय भी आपकी याद कभी नहीं भूलूंगा। और अब हम क्या करते हैं, केवल संसारिक इन कार्यों में सारा जीवन लगाते हैं। भगवान की याद तो कभी कोई चर्चा करता तभी आती है, ना तो स्वप्न में भी ना आती है हमारे को। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि वो परमात्मा जब आपको मां के गर्भ में भी सुरक्षित रखता है, आपके बाहर आने से पहले आपके आहार के लिए मां के सतन में दूध भेजता है, तो आगे आने वाले जीवन में जो तूने जैसा किया है उसमें क्या वो कमी करेगा। तो इस आधार से भी हमने उन बुराइयों से हट जाना चाहिए जो हम स्वयं धनी बनना चाहते हैं, चोर मिलावट करके, झूठ बोल के, चोरी करके, हम इस तरह जो धनी बनना चाहते हैं रिश्वत लेकर, तो ये हमारी भूल है। ये पैसा ऐसे एकत्रित किया हुआ आपके पास नहीं रहे। परमात्मा आप पर रहम करेगा और उसकी भक्ति सत्य करोगे तो जो प्रारब्ध है वो तो आपका मिलेगा मिलेगा, लेकिन उस प्रारब्ध के अंदर जो काटे हैं कर्म के वो नहीं दुख देंगे। और फिर प्रारब्ध से अधिक भी देगा, क्योंकि परमात्मा के पास वो समर्थ है, वो उस उनके पास एक विटो पावर है, वो केवल कबीर साहब के पास है। जैसी आपकी श्रद्धा और लगन देखेगा, विश्वास और दृढ़ता देखेंगे, तो आपको किस्मत से अधिक भी देंगे, अच्छा भी देंगे, और आपके पाप रूपी कर्मों के कांटों को भी वो पहले ही निकाल देंगे, आप तक तो आने भी नहीं देंगे। वो जब आप पर समर्पित हो जाओगे उनके ऊपर कैसे समर्पित होंगे, और फिर वो कैसे करेगा। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस एपी हर में सुरत प्रीतम में ऐसे जान लगावे। कि जैसे पतिव्रता अपने पति से ही लीन रहती है, आन पुरुष अन्य पुरुष नहीं भावे, उसके मन में स्वप्न में भी नहीं आता अन्य पुरुष के प्रति कोई भी कुविचार। और यदि वो लड़की अपने मां के चली जाती है तो भी अपने पति की शुद्ध वो मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर से वो नहीं भूल पाती। ऐसे ही आप उस परम पिता पर आश्रित हो जाओगे, कहीं पर भी आप काम कर रहे होगे, किसी भी फील्ड में, चाहे दुकान मजदूरी किसानी या नौकरी, तो आप उसी लड़की की तरह उस पर अपने पति यानी कबीर भगवान को, परमात्मा को, उस मंत्रों को, उसके रहम को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो उस समय आपका नाता उस परम पिता से जुड़ चुका है। यदि आप पल पल पर भूल जाते हो, याद नहीं रहती है भगवान की मेहर, तो अभी आपकी समर्पण भाव में कोई कमी है, जिस कारण से भगवान ने आपको दृढ़ता से नहीं पकड़ा है। तो जब आपको परमात्मा दृढ़ता से कैच कर लेगा, आपकी सच्चा समर्पित भाव देख लेंगे, वो तो अंतर्यामी है। तो उस समय कहा है कि जैसे पतिव्रता जमीन पर और जो जो धर है पांव जितने कदम रखती है, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। इतना दयालु है ये कबीर भगवान, आपके जीवन रूपी सफर में आपके कदम रखने से पहले आपके वो पाप रूपी कांटों को बुहार देगा, झाड़ू दे देगा आपके रास्ते में, कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को यो कांटा ना लग जाए। अब दास देख रहा है जिसने आज 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए, ने 10-10 वर्ष हो गए, 15-15 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए, 6-6 वर्ष हो गए, अब वो कितना सुखी जीवन जी रहे हैं, और उनके घरों के पास में दूसरे रिश्तेदारों में अपने घरों में दूसरे चाचे ताऊओं में के कहकर टूट रहे हैं, और कितने कितने दुखों का वो सामना कर रहे, तो वो इन पर भी आने थे, आज उनको पता भी नहीं कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आना था, क्यों आया ही नहीं। तो पुण्यात्माओं आज उन भक्तों से पूछकर देखना आप, क्योंकि आपको यहां इकट्ठा इसलिए किया जाता है, आपसे पहले लगे हुए बच्चे भाई बहन आपके भी यहां आते हैं, और वो आपको अपना अनुभव सुनाते कि हम ऐसे दुखी थे, और जिस दिन से दीक्षा ली है, मालिक की शरण ग्रहण की है, हम पर कोई संकट नहीं आया। आपको दृढ़ता मिलती है, आपको विश्वास होता है, और वो सच होती है। जब एक आम आदमी जिसको आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं बता रहा, तो सच्चाई होती है। तो इसलिए फिर आप और डगमग होने से बच जाते हो, इसलिए आप जी को यहां बुलाया जाता है। और जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने जो आपको, जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तो आपको परमात्मा अपने कोटे से लाभ देना शुरू करेगा, और फिर आपको ऐसी विधि साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई जाती है, जो आपने फिर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे सरकार क्या करती है कि किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं है, उसको लोन देती है, और उसमें कुछ सब्सिडी भी देती है कि भी 80% सब्सिडी है, 1,00,000 रुपया दे दिया, अपना गुजारा कर और धंधा शुरू कर दे, और फिर आप केवल 20,000 ही वापस लौटा देना, 80 माफ कर दिए, तो कितना सहयोग मिल गया उसको। लेकिन उसने अपना तन मन धन से फिर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, बार बार सब्सिडी मिलेगी नहीं। इसी प्रकार यहां आने वाले को परमात्मा अपने कोटे से राहत देनी शुरू करता है, और फिर विधि बताता है कि ये कमाई कर और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, भाग्य भक्ति तू कर, ऐसे दान धर्म कर, फिर तेरे को तेरा गुजारा यानी तेरी भक्ति कमाई बढ़िया हो जाएगी, तेरा अच्छा काम चलेगा, तभी सफलता होगी। क्योंकि आपके भाग्य में सुख नहीं था, संकट थे, इसलिए तो आप पर कहर टूटे, दुख हुए। अब यहां आओगे, आपको सुख मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, आपकी आयु भी बढ़ाई जाएगी, परमात्मा कबीर साहब सक्षम है। लेकिन आप हृदय से चाहोगे, ऊपरले मन से आओगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। आप हृदय से चाहोगे और समर्पित हो जाओगे परमात्मा से अतिरिक्त, इस कबीर साहब से अतिरिक्त कोई और इष्ट में, आप स्वप्न में भी ध्यान नहीं लगाओगे, तब ये परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा, और समर्थ जब हाथ पकड़ लेता वो छोड़ता नहीं। तो इसलिए आप जी यहां आने से पहले इस ज्ञान को समझें, और हमारे मूल उद्देश्य को समझें कि हम क्या बताना चाहते हैं। हम केवल यहां संकट निवारण और रोग निवारण के लिए नहीं बैठा दास, ये तो एक्स्ट्रा देते हैं आपको, ये तो आपको रूंगे में देते हैं, रूंगे में, ये सौदे में नहीं हमारे में। हमारे सौदे में तो केवल जन्म और मरण के इस कहर को समाप्त करने का ये हमारा उद्देश्य है। कोटि जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरवया बोरे कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमिया ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता हो गए जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर मद महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नहीं ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। हमारा ये सौदा है, हम ये सौदा दे रहे हैं, हम ये सौदा बेच रहे हैं। कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रहे। एक करोड़पति व्यक्ति अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस हेलीकॉप्टर से एक मिनट में मृत्यु होगी, क्योंकि शास्त्र अनुकूल विधि साधना उनके पास थी नहीं। पिछला पुण्य समाप्त हुआ, संस्कार जीवन था वो समाप्त हुआ, वो जोड़ा जाड़ा धन यहां छोड़कर चला गया भाई पल्ला जाड़ के, और अब क्या बनेगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। गुणात्माओं कलेजा फट जा मानस का, जब थोड़ी सी होश हो तो, और शुद्धि आवेगी, ज्ञान आएगा, अकल आवेगी इस ज्ञान के सुनंत, और ये ज्ञान सतगुरु दे सकता, पृथ्वी पर कोई दे नहीं सकता। और सतगुरु वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। जो परमात्मा का कृपा पात्र हो, तो क्या बताया जा रहा है कि कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुक्कर कुत्ता, सुक्कर सुअर, खरगदा और कौवा हंस बुगारे, ना जाने कितने पशु पक्षियों के शरीर आपने धारण किए, कितने कष्ट उठाए। राजा भी बना, देवता भी बना। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है। महावीर जैन जी का इतिहास, वो 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओए होए, और ना जाने घोड़े बिल्ली नपुंसक करोड़ों बार बनया, और कुछ बार राजा भी बना, 80 लाख बार देवता भी बना, 80 लाख बार 80 लाख बार देवता बनया और 60 करोड़ बार गधा बन गया। गधा ते कब बनया बतेरा, सारी अकड़ निकल जा जीव की, तो खाक देवता बनया, फिर गधा बनकर खड़ा हुआ। व्हाट इज दिस, ये काल की भूल भुलैया, मूर्ख बना रखे अपने। यहां मेहनत करो, मजदूरी करो, साधना करो, और ऊपर काल के होटल में उसका नाश करके, काल ने होटल खोल रखे ऊपर स्वर्ग इन सभी देवताओं ने, और आप किसे ही टैक्स लेकर, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर करके ये मनमाने रेट लगाते हैं वहां पर, आपकी पूंजी से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। यह सारा कंजूस देश है, कंजूस लोक है, यहां कोई भी सक्षम नहीं है। एक ही स्थान है जिसमें किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई कष्ट नहीं है। ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो बिना नाड़ी का शरीर एक तत्व से बना हुआ है। उसमें वर्ग अवस्था नहीं है, उसमें मृत्यु नहीं है, वहां सारे भरे भंडार हैं। अब जैसे आप यहां आते सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा में। आप यहां सारा दिन देखते हो कैसे आपका टाइम जाता है, सत्संग होता है 2 समय, बाकी सत्संग होता है 4 घंटे 5 घंटे में, और बाकी 19 घंटे आप 6 घंटे सो भी लेते हो, बाकी समय कितना जाता है आपको पता भी नहीं चलता, कब रात हुई कब सुबह हुआ। कभी चर्चा करते हो अपने भाई बहनों से, कभी भगवान की चर्चा करते हो, कभी सिमरन करते हो, समय गया। और यहां बना बना सारा सामान आपको तैयार मिलता है, ना कोई टेंशन किसी प्रकार की। तो यहां तो शरीर 5 तत्वों का आपका इस करके पूर्ण शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो आहार बिगड़ गया हमारा। आहार कैसे बिगड़ गया कि जितना भी आज अन्न बनता है इसके अंदर किस प्रकार के खाद डाले जाते हैं, और फिर उनको खाकर हम शरीर में हमारे एक विशेष बेचैनी सी सबका बनी रहती है। और वहां ऐसा शरीर नहीं है, इतनी शांति, परम शांति है वहां पर उस सतलोक के अंदर। तो वहां आपको सारी चीज बनी बनाई मिलेंगी, जो भी इच्छा करोगे, जिस भी प्रकार की जो खाद्य पदार्थ वहां उपलब्ध है, आपको 1 सेकंड में वही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर अपना वहां विकार है ही नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, शरीर ऐसा नहीं जिसमें ये अपने आप ही कोई न कोई दुख बना रहता है, कोई टेंशन बन जाती है, कोई बीपी हाई कभी लो हो जाता है, वहां ऐसा नहीं है। तो हम जो सौदा यहां पर करते हैं वो ये है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग? भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बढ़री खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जग पतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे, कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर्मा नो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोह गिया रे। जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोह गिया रे। जग सारा रोह गिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोह गिया रे। परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तीन अमर देवता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे लेकिन विष्णु जी और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर अंतर्यामी न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ और विद्या दी, भगवान ने अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा तो क्या पाया। ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में यु काल बोला था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहे थे और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में, तो वो श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटिया, ये भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, तो इनसे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटके का कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, यो रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सजीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही, इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। ये भी कलयुग बीतते 5505 तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि परवानी कोई, ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं ये जो मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा, जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक तो मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा। ये सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था कलयुग बीतता 5500 पाचा जब यो वचन मेरा होगा साचा।